نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إذا لا كما تقول في كل ذلك غزل عبد الجليل قلي هذا يوم عبد سامنے سے دیکھنے کی بات بچوار ہوتی ہے نا, تھوڑا آرام سے دل کشادہ ہو جائے, آرام سے پیچھے آرام سے بیٹھو. میرے شیخ, میرے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دعوت رکھا, تم نے فرمایا پانی تو پلاؤ یار, یہ نہیں فرمایا کہ پانی تو پلاؤ, فرماتے بھی تھے پانی پلاؤ. کل اعلان کر دینا 4:30 نماز کا, 4:30 بجے نماز کر دینا. تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوزی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے, حدیث شریف پڑھا رہے تھے کہ جب اہل جنت اور اہل جہنم, اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے اور اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے. اچھا, جنت میں جو ایک مرتبہ چلا جائے گا پھر وہ کبھی جنت سے باہر نہیں آئے گا, جس ایک مرتبہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ جنت سے باہر کبھی نہیں آئے گا. اور میرے مرشد نے فرمایا اسی لیے جب اللہ والے علماء ربانیین جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو ان کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا, جنت کا بورڈنگ پاس ملنے کے باوجود ان کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. اور اس کی وجہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا واپس نہیں آئے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ روکا اس لیے جائے گا کہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ ابھی آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں, آپ کے اتنے سارے جو دوست ہیں وہ کہاں جائیں گے. اپنے دوستوں کو لے کر جاؤ, ان کی شفاعت کرو, ان کی سفارش کرو, یہ حق اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے, یہ شرف عطا فرمائیں گے. اور یہ شرف کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کیوں کہ ان گناہگاروں کو جنت میں داخل کرنا ہے, ورنہ شرف کیوں دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرمائیں گے علماء ربانیین کو, اہل اللہ کو, کہ وہ جنت میں داخل نہ ہونے دیں گے ان کو, اور وہ سب کی شفاعت اور سفارش کریں گے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ایسا شخص اہل علم اللہ والے علماء ربانیین یہ کتنے لوگوں کی سفارش کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں, جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنے لوگوں کی سفارش فرمائیں گے یہ لوگ. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے ایسا تعلق رکھو کہ وہ تمہیں اپنا دوست کہہ سکے. یہ نہ کہو کہ دوست بنا لیں, یہ ایسا تعلق رکھو کہ وہ تمہیں خود اپنا دوست کہہ سکے. کیونکہ دوست زبان سے کہلوانے سے نہیں ہوتا, یہ تو دل کی بات ہوتی ہے. لہٰذا ایسا تعلق رکھو کہ وہ تمہیں اپنا دوست کہہ سکے, میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں. لہذا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو جنت مکمل بھر جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالی جنت سے سوال فرمائیں گے کہ حلیم طلعت کیا تیرا جنت, اے جنت کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جنت سوال کرے گی, پوچھے گی حلیم مزید, جنت پوچھے گی حلم مزید. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ, कि और भी अल्लाह मियां मजीद कुछ है, अहले जन्नती और हैं, क्योंकि अभी तो मेरा पेट नहीं भरा। तब मेरे शेख ने ये फरमाया, हदीस शरीफ पढ़ाई कि उसके बाद अल्लाह ताला एक कौम को पैदा फरमाएंगे। हटो तो इधर जरा, इमाम साहब फारिग हो जाए, उनको यहीं बुला लीजिएगा, थोड़ा सा उस तरफ खसको, इन दो हजरात के लिए जगह खाली करो। ये आपकी दोस्ती है कुछ उनसे, कुछ जान पहचान है? आइए जरा, ऐसे रखिए, थोड़ा सा इधर हो जाए मौलवी साहब। अच्छा ये बताइए, मगरब तक वक्त है ना? बस उस दिन तो हमसे पूछना बोल गए, आपके घर वाले थे तो आज कुछ कुछ बात कान में पड़ रही थी ना। तो अल्लाह ताला अहले जन्नत से पूछेंगे, जन्नत से पूछेंगे क्या तेरा पेट भर गया? तो जन्नत कहेगी अल्लाह मियां मजीद है। तो अल्लाह ताला एक कौम को पैदा फरमाकर उस कौम को जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ने जब यह हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे तो एक तालिबे इल्म ने कहा, हाय हजरत क्या मजे होंगे उस कौम के, कैसे मजे से जन्नत मिलेगी। तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर एक अजीब जोश और कैफियत आई और जोश से फरमाया, अरे मियाँ क्या खाक मजे होंगे, अरे मियाँ क्या खाक मजे होंगे कि जिन्होंने न नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न गुनाह से बचने का गम उठाया, न ज़कात दी, न हज अदा किया, न माँ बाप की खिदमत की, न अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की, न अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की और न गुनाह से बचने का गम उठाया, उनके क्या खास, उनको क्या पता जन्नत क्या है, जन्नतों का मजा तो हमें मिलेगा। बात क्या है कि एयर कंडीशन का तो पता उसको चलता है कि जो गर्मी से आए, उससे पूछे एयर कंडीशन क्या है, जो ठंडा पानी, ठंडा पानी का तो मजा उसे है जिसे प्यास शदीद लगी हो, जब उसको ठंडा यख पानी दिया जाए, एक एक घूंट से, एक एक घूंट में जिस्म का बाल बाल अल्लाह ताला के लिए अर्ज करता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हुई अहले जन्नत की कैफियत। अब अहले जहन्नम का क्या हाल होगा? जहन्नम में, जन्नत के बारे में तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो एक मरतबा जहन्नम जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो जन्नत से कभी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जहन्नम में जो लोग जाएंगे जहन्नम से बाहर भी आएंगे, और जो जहन्नम में जाने के बाद एक मरतबा बाहर आ जाएगा फिर वो दोबारा जहन्नम में नहीं जाएगा। ये है जरूर कि जहन्नम से बाहर आएंगे लेकिन जो बाहर आ जाएगा फिर वो दोबारा जहन्नम में नहीं जाएगा। इसलिए वो हदीस शरीफ बड़ी मशहूर है, क्या अजीब, मेरे शेख ने सुनाया कि दो आदमियों को अल्लाह ताला जहन्नम से निकालेंगे, दो जहन्नमियों को निकालेंगे और उन जहन्नमियों से पूछेंगे क्या करेंगे, कि अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे आमाल नामा और ये सब, और पूछेंगे जहन्नम का क्या हाल है। तो एक से फरमाएंगे कि तूने जिंदगी भर क्या क्या, अल्लाह कोई फरमा बरदारी है नहीं, नाफरमानी है बस, मोमिन की बात करो, ये अहले जहन्नम वो है जो ईमान वाले होंगे, ईमान वाले बाहर आएंगे सिर्फ। उससे अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जा जहन्नम में कूद जा, जब तेरे पास कोई नेकी नहीं है कुछ, वो जाएगा और सीधा जाकर जहन्नम में छलांग मार देगा। दूसरे से फरमाएंगे जा तू भी जहन्नम में जा। अब वो जब जहन्नम की तरफ चलेगा तो चलते चलते मुड़ मुड़ कर देख कर आएगा अल्लाह ताला को, मुड़ मुड़ कर देखेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा और मुड़ मुड़ कर देखता रहेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, जालिम ये क्या, वो देख तेरा साथी कहते उसने छलांग मार दी और तू क्या अभी तक इतनी सुस्ती दिखा रहे। तो अल्लाह ताला से अर्ज करेगा कि अल्लाह मियां कभी कभी मैं किसी आलिम के पास, किसी अल्लाह वाले के पास बैठता था तो मैंने उससे एक बात सुनी थी कि एक मरतबा जिस मोमिन जहन्नमी को अल्लाह ताला जहन्नम से निकालेंगे दोबारा उसको जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएंगे। तो अल्लाह मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके नबी की हदीस शरीफ गलत है या उस आलिम का कहना गलत है। क्योंकि आपने मुझको जहन्नम से निकाला है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन गलत है। बस अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ना हदीस शरीफ गलत, ना मेरे उस प्यारे आले अल्लाह वाले आलिम का इरशाद गलत है, जा सीधा जन्नत में चला जा, उसको अल्लाह ताला जन्नत में भेजेंगे। फिर वो जो जहन्नम से निकाला था दोबारा कूद गया था, फिर उसको दोबारा निकलवाएंगे और पूछेंगे जालिम ये तूने क्या किया, ये तू जाकर जहन्नम से निकाला, जहन्नम में जाकर छलांग मार दी, ये तूने क्या किया। वो कहेगा कि अल्लाह ताला ए मेरे अल्लाह, सारी जिंदगी मैंने आपकी नाफरमानी की, सारी जिंदगी जो बात हर काम आपकी मर्जी के खिलाफ किया, एक काम में आपकी फरमाबरदारी नहीं की। आज आपने एक दफा हुक्म फरमाया था कि कूद जा, मैंने कहा एक मर्तबा तो आपकी बात मान लू, एक मर्तबा तो आपकी बात मानू, मैंने कोई आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आज सोचा कि आज कभी नहीं मानी लेकिन एक मर्तबा तो मान लू। बस अल्लाह ताला उसकी इस बात पर उसको भी जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। ये है अहले जन्नत। अब ये वो लोग होंगे जो आखिरी, अब उसके बाद जहन्नम का मेरे दोस्तों अल्लाह ताला जहन्नम से भी सवाल फरमाएंगे कि हलिम तलाती, क्या तेरा पेट भर गया। तो जहन्नम कहेगी हलमिम मजीद, अल्लाह मियां मजीद कुछ जहन्नम ही है। अब चूंकि फैसला हो चुका, तमाम जहन्नमियों का फैसला, जन्नतियों का फैसला हो चुका, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, अब इंसान नहीं है। अब तो अल्लाह ताला अब जन्नत ने जब सवाल किया तो जन्नत के लिए कौम को फायदा फरमाकर उसमें दाखिल किया। अब जहन्नम सवाल कर रही कि हलमिम मजीद, तो मेरे शेख फरमाए वहां कौम को पैदा फरमा के जहन्नम में नहीं दाखिल फरमाएंगे, बल्कि फैज हदीस शरीफ है फैजू कदम, फिर अल्लाह ताला अपना कदम मुबारक रखेंगे। उस कदम के बारे में उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं अल मुरादु बिल कदम, ये कदम से क्या मुराद है, अत तजल्ली उल खास, खास तजल्ली मुराद है कि जैसे ही अल्लाह ताला कदम तजल्ली दान नाजिल फरमाएंगे तो जहन्नम क्या कहेगी, बस 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 पेट भर गया। वो फिर रिवायत है और एक रिवायत में है कद कद कद, तीन मरतबे अल्लाह ताला जहन्नम तीन दफे अर्ज करेगी कि अल्लाह मियां मेरा पेट भर गया। अब एक मेरे शेख ने यहाँ एक सवाल कायम फरमाया, फरमाया सवाल पैदा होता है कि जन्नत ने जब सवाल किया तो अल्लाह ताला ने कौम को पैदा फरमाकर उस कौम को जन्नत में दाखिल किया, वहां सवाल देखिएगा, और जब जहन्नम ने सवाल किया तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली नाजिल की, यहाँ कौम को नहीं पैदा किया और वहां कौम को पैदा फरमाया। तो मेरे शेख फरमाते हैं कि वजह इसकी ये है कि जन्नत देना ये अल्लाह ताला के फजल से, अगर अल्लाह ताला ने जन्नत में कौम को पैदा फरमा कर दाखिल किया तो ये अल्लाह ताला का फजल है, और अल्लाह ताला का फजल पाबंद अदल नहीं है। अल्लाह ताला का जो फजल है वो अदल कानून का पाबंद नहीं है कि जी जो कानून से जन्नत में जाएगा उसी को जन्नत भेजेंगे, नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को जो कानून से जन्नत में जाने के काबिल नहीं होंगे अल्लाह ताला महज उनको अपने फजल से जन्नत में भेजेंगे। जैसे ये कौन, इसने कौन सी इबादत की, क्या हुआ, लेकिन सिर्फ अल्लाह अपने फजल से उनको अता फरमाएंगे। लेकिन जिस आदमी ने गुनाह नहीं किया, जिस कौम ने कोई नाफरमानी नहीं की, अगर अल्लाह ताला उसको पैदा फरमाकर जहन्नम में दाखिल कर दे ये तो जुल्म होता, और अल्लाह ताला जुल्म से पाक है। कहना चाहो देखो सवाल और जवाब कैसा है, ये इल्मी सवालात और जवाब है जिसकी लज्जत होती है मेरे दोस्तों, कि वहां कौम को पैदा किया, कौम को पैदा करना फर्ज था, और वहां कौम को पैदा नहीं किया, क्यों, अगर वो पैदा करके दाखिल करते तो ये जुल्म होता और अल्लाह ताला जुल्म से पाक है। तो मेरे शेख ने अब यहाँ एक बात फरमाई, फरमाया कि जहन्नम जिस तरह कहती है हल में मजीद, मेरा पेट नहीं भरा, उसी तरह से ये जो जहन्नम का चीज, जहन्नम हेड ऑफिस है, इसकी ब्रांच हमारे पास है, जहन्नम हेड ऑफिस इसका ब्रांच जो है वो नस है हमारा, जिस तरह से जहन्नम का पेट नहीं भरता जहन्नमियों से, उसी तरह से हमारे नफ्स का पेट गुनाहों से नहीं भरता। लहजा वो क्या कहते, कहते यार आज मौलवी साहब ने तकरीर बहुत अच्छी की, बस अब मैंने तो सच्ची तौबा करनी है, लेकिन बस एक माशूका को जो मैंने केएफसी पे बुलाया तो एक मरतबा उससे मिल लो, बस एक मरतबा, अब पक्की सच्ची तौबा, फिर कभी नहीं मिलूंगा उससे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो राजी हुई है। سے ایک گناہ کر لوں بس، پھر اس کے بعد زندگی بھر گناہ نہیں کروں گا، پکا سچا وعدہ.
تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ نفس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. اس کو کہہ دیا نا کہ ایک بد نظری کرا لو، تو وہ ایک بد نظری کر لے گا، نفس کو تو اس کی غذا مل گئی. جب غذا مل گئی تو قاعدہ یہ کہ غذا کے بعد تو انسان طاقتور ہو جاتا ہے، یہ طاقت کا قاعدہ ہے نا. لہذا اب نفس کو غذا مل گئی، وہ طاقت آ گئی، تھوڑی دیر تو آرام سے بیٹھ جائے گا، پھر تھوڑی دیر میں پھدکنا شروع کرے گا کہ یار ایک بد نظری اور کرا لو. پچھلی مرتبہ کیا تھا، موقع نہیں ملا اسے ہاتھ ملانے کا، اب جاؤں گا تو ذرا ہاتھ بھی پکڑ لوں گا اس کا، لگے ایک ملاقات اور سے. لہذا پھر کیا کرتا ہے، اچھا وہ کہتا ہے، اب وہ نفس کو کہتا ہے، روح کہتی ہے، دل کہتا ہے، یار دیکھو کہا تھا تم نے ایک مرتبہ توبہ، اب تمہارا گناہ نہیں. کہا یار ایسی کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی، کر لو نا کیا ہے، تو اب توبہ سچی کر لینا، پہلے بھی تو کیا تھا نا. اب نفس اب نئی پٹی پڑھاتا ہے، یہاں تک کہ نفس حاوی ہو جاتا ہے. میرے دوست وہ جو عین اللہ کی صحبتوں سے ایمان کا نور ابھرتا ہے، اور وہ جو دل میں قوت اور تقویت آتی ہے، اور وہ جو نفس دب جاتا ہے، وہ نفس جو پہلے مری نواز میں کہتے ہیں کیا ہے، اگر کر لو، اگر آپ مرضی ہے آپ کی کر لو، تو کیا دیکھ لو کتنا مزہ آئے گا، یہ بھی تو دیکھو، وہ مری نواز میں کہتے ہیں پہلے. لیکن جس وقت اس کو غذا مل جاتی ہے، ہاں بس ٹھیک ہے، تو اگلے جمعے پہ اتوار کو پھر چلے جانا، تو صوبہ کر لینا، ایسا کیا ہے اتنا مارا جا رہا ہے، تو ایسے پھر ہریل بن جاتا ہے نفس، کیونکہ طاقت ہے اور روح کمزور ہے. گناہ کرنے سے روح کو ہم غذا دیتے نہیں ہیں، روح کی غذا نورانی اعمال ہے، روح کی غذا نورانی اعمال ہے، اور اس سے تکلیف ہوتی ہے گناہوں سے روح کو. اور نفس کی غذا نافرمانی اور بدماشی ہے. نفس کو غذا ملی، روح کو غذا نہیں ملی، اب دونوں میں جو کشتی ہونی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ روح کمزور اور نفس حاوی ہو گیا. اب پھر وہی گناہ شروع. اب اور جو شخص اہل اللہ کی صحبتوں سے جو ہمت حاصل ہوتی ہے، اس ہمت کو استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بس کہہ دیا نا، خبردار آرام پہ بیٹھ جا، چلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. نفس کتی تیری دم پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دوں گا. اچھا نفس ہے مونس، نفس مونس ہے، یہ مذکر نہیں ہے، یہ مونس ہے، روح مذکر ہے. بتاؤ اگر کسی شیر کے اوپر لومڑی بیٹھی ہو، میرے شیر کی مثال ہے، کیا پیاری مثال ہے. فرمایا کسی شیر کے اوپر لومڑی بیٹھی ہو، اس کو اگر یہاں چلو یہاں چلو یہاں چلو، تو ہنسیں گے، لو جی لومڑی سے زیر ہوا ہوا ہے. ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ جیسے کسی کو کہا جائے وہ زن مرید، ساری گالیاں دے دو لیکن اگر زن مرید بول دو نا، یہ بہت بڑی گالی لگتی ہے ہم کو، کہ بیوی کا غلام، چورو کا غلام، یہ گالی بہت بڑی گالی ہے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو صرف اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، اس کو بھی یہی بولتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے. اس کو اس سے شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا، یہاں تک کہ اگر بیوی کی اونچی آواز میں بھی بات کر لے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں. اگر بیوی شوہر سے اونچی آواز میں بات کرے تو یہ گناہ نہیں ہے بیوی کا، یہ اس کی ناز برداری ہے. یہ نہ سمجھے کہ جو میں مجازی خدا ہوں، خبردار اونچی آواز میں بات کی، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھنا اس مسئلے کو. کہ اگر بیوی اونچی آواز میں بات کرے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تیری کتی سے زبان کھینچ لوں گا. تو نے کیسے اونچی آواز میں بات کی مجھ سے، جانتی نہیں میرے حقوق؟ جی جناب، آپ اپنے حقوق رکھیے اپنے پاس، ذرا آپ اپنے حقوق بھی ادا کیجیے، آپ کی ذمہ یہ بھی حق ہے کہ اس کی ناز برداری کو برداشت کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جب تو ناراض ہو جاتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے، اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. مست ہو گئی، پوچھا فدا کا بھی و امی، میرا باپ میری ماں آپ کا قربان، آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے اور رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے ربی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اندازہ ہے کہ اپنی گھر والی کا، اپنی اہلیہ کا، اپنی زوجہ کا، کہ اس کے روٹنا، اس کا راضی ہونا کتنی خبر ہے میرے دوستو، اور آپ کچھ فرما نہیں رہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ نہ کہیں کہ حقوق، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر لومڑی کسی شیر پر سوار ہو، لوگ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے؟ ارے دیکھو شیر کو کیا ہو گیا، لومڑی کے کہنے پر جا کر نہ اسے ہتھیان سے داڑھی صاف کرا لی، ये शेर जो होता है उसकी तो दाढ़ी होती है, अगर शेर की तो दाढ़ी होती है और शेरनी की दाढ़ी नहीं होती है। अब लोमड़ी के कहने के ऊपर कि लोमड़ी के ना कहा कि देख मेरे भी गाल चिकने, मेरे भी गाल चिकने, तेरे भी गाल चिकने हो जाएंगे, तो दोनों एक जैसे लगेंगे। एक साथ मेरे यहाँ आते हैं, आप तो कहीं चले गए अपने वतन में, तो उन्होंने बताया कि मैंने दाढ़ी क्यों रखी, पहले दाढ़ी नहीं थी। मैंने कहा मैंने दाढ़ी इसलिए रखी कि एक दिन तुमने किस्सा सुनाया तकरीर में, हजरत से सुना हुआ था किस्सा, मैंने शेख से सुनाया वो किस्सा कि एक मिस्टर और एक मौलवी की दोस्ती थी। तो मिस्टर को, मिस्टर एक दिन मौलवी साहब को अपने घर ले गया। मैंने कहा चलो यार कुछ गपशप लगाए, कुछ दावत शावत। अब वो घर में ले गए, उन्होंने कहा अच्छा भाई दिल खुशी करने की। अब वो जो है अपने बच्चे को लेकर आए कि मौलवी साहब यार इस पर दम तो कर दो। अब जब बच्चा आया तो बच्चे ने जो मौलवी साहब को देखा चीख मार कर रोने लगा। उन्होंने कहा मौलवी साहब इसलिए तो मैं दाढ़ी नहीं रखता कि बच्चे डरते हैं। तो उन मौलवी साहब ने फरमाया कि भाई देखो बात यह है, आपने ठीक कहा बच्चे डरते हैं, वाकई ऐसा है, लेकिन बात यह है कि बच्चा अपनी अम्मा के दरमियान में सोता है, माँ और बाप के दरमियान में, और रात को दोनों हाथ भी फेरता रहता है कि अब्बा अम्मा है कि नहीं है। और फरमाया उन मौलवी साहब ने कि बात है कि वो अम्मा की गाल पर हाथ फेरा तो वो भी चिक रहे हैं, अब्बा के गाल पर हाथ फेरा वो भी चिक रहे हैं, वो समझता था मेरी दो अम्मा है। आज बच्चे ने अब्बा देखा, आज बच्चे ने अब्बा देखा और अम्मा से क्या कहते हैं अम्मा चम्मा रोटी लिया, और अब्बा को कहे मेरे शेर ने फरमाया कभी कहते अब्बा चप्पा रोटी लिया, अब्बा तो कच्चा चबा जाएगा। फरमाया कि आज असल में इसने अब्बा को देखा और बच्चे अब्बा से डरते हैं। इस बात पर उसने कहा कि मुझे इतनी बात हुई यार ये तो अजीब बात है, कहा उसने यही कहा कि मैंने सिर्फ इसी बात पर दाढ़ी रख ली। बात है असल में कौन सा खतरा, बारिश तो बहुत होती है लेकिन कौन सा खतरा सीप में चला जाए और अल्लाह के हुक्म से मोती बन जाए, बस ये बात होती है कि कौन सा बात है। बातें तो बहुत है, उलूम है, मार्फत की बात है, लेकिन कौन सा खतरा हमारे दिल के सीप में जाकर मोती बन जाए, कौन सा खतरा, बस इसी लालच में मेरे दोस्तों अहलुल्लाह की सोहबतों में बैठा जाता है। तो मेरे दोस्तों ये जो नफ्स है, अब ये नफ्स तकाजा करता है कि गुनाह करो। अब हम क्या करते हैं कि तकाजे का इलाज कैसे करते हैं, तकाजे से कि जी अगर हमने तकाजे पर अमल नहीं किया तो बड़ी तकलीफ होगी। हकीमुल उम्मत थानी रहमतुल्लाह अलैह की बात मैंने शेर में सुनाई, अरे इधर बैठ, वहां बैठा पीछे सो रहा है, उठो लोग समझेंगे कि हजरत बयान हजरत के बयान से हजरत तो अर्श पर पहुंच गए, फिर मुराकबे में ना वो बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, बहुत ऊंचे पता नहीं जमीन पर धरे हुए। तो अब हम हजरत ने सुनाया कि हकीम उल उम्मत फरमाते कि देखो तकाजे का इलाज तकाजे से नहीं होता। अगर फिर हजरत ने एक मिसाल दी, अल्लाह हकीम उल उम्मत तो मिसालों के बादशाह, बात को समझाना हजरत का, फरमाया कि अगर किसी को खुजली हो तो खुजली का इलाज खुजली करना नहीं है, क्योंकि खुजली करेगा खुजली फैलती चली जाएगी। और फरमाया बात है कि खुजली में मजा तो बड़ा आता है, जैसा खुजली करता है बड़ा मजा आता है। हजरत ने हकीम उल उम्मत ने फरमाया ऐसा मजा आता है कि जैसे शादी हो रही है, वलीमा देखे चोरी हुई है, दुल्हन तैयार हो रही है और जरदा बिरयानी इसकी देखे तैयार हो रही है। फिर फरमाया लेकिन जब खुजली करते करते खाल फट जाती है, फिर जलन होती है, फिर क्या आता है, हाय आंधी आई, देखे उलट गई, दुल्हन भी भाग गई, शामियाने उजड़ गए। हमारे कि खुजली का मजा जैसा थोड़ी देर का मजा है, गुनाह का मजा भी ऐसे ही थोड़ी देर का है। गुनाह का मजा थोड़ी देर का और परेशानी हमेशा की, मजा चंद मिनट का और परेशानी हमेशा की। इसलिए हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने कहा कि हजरत जिस वक्त मैं नजर बचाता हूँ मुझे बड़ी तकलीफ होती है नजर बचाने में। हकीम उल उम्मत थानवी ने पूछा कितनी देर, उसने कहा हजरत 3 मिनट। पूछा अच्छा एक बात तो बताओ, जब तुम नजर डालते हो किसी औरत या लड़के को देखते हो तो उस वक्त तकलीफ होती है? जी हजरत उस वक्त भी तकलीफ होती है। पूछा कितनी देर, कहा हजरत 3 दिन। क्यों? अब वो याद आ रही है, हाय क्या आंखें थी, कैसी कंचा आंखें थी, और क्या कंचा पीठ था, ये भी बोलते हैं लोग। कंचा आंखों को क्या कहते हैं, क्या कंचा पीठ था यार। अब वो याद आ रही है, मिलेगा नहीं। अब उसके हुस्न के उतार चढ़ाव को देख लिया, काले बाल, गोरे बाल, वैसी आंखें, ऐसी आंखें, ऐसी चाल वगैरह वगैरह। अब ये जो गम है, इस गम का क्या नाम है, इस गम का नाम है गमे हुस्ने मालूम। ये नाम मेरे मुर्शिद ने रखा है, गमे हुस्ने मालूम। अब हुस्न पता चल गया ना कि आंखें कैसी, बाल कैसे, गाल कैसे, फला फला कैसा। और जो नहीं देखा उसमें भी तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ का नाम है हसरते हुस्ने नामालूम। देखिए नाम कैसा जी है, हसरते हुस्ने नामालूम, यानी हुस्न मालूम ही नहीं है कि आंखें कैसी है, बाल कैसे है, गाल कैसे है, चाल कैसी है, क्योंकि देखा ही नहीं ना। अब तकलीफ ये है कि यार देखा नहीं, सब इतनी तकलीफ है, अब क्या हुस्न है ये नहीं पता। तो कायदा ये कि जब पता ही नहीं कि गम क्या है तो गम होगा, जब मालूम ही नहीं है किस चीज का गम करना है तो गम कैसा। वो एक कारी साहब थे, देहातों में जैसे होते था, बस कोई दो चार लफ्ज पढ़ लेता था तो कारी बन जाता था। अब उसके बाद वो कारी साहब के यहाँ जिस बच्चे के यहाँ किसी पढ़ाने जाते थे, तो वो उन्हीं का जो था वो मुलाजमत शहर करने चला गया घर वाला, और उसने बताया कि मुझे शहर में नौकरी मिल गई। अब ये पढ़ना लिखना जानते थे, अब खत आया कि मुझे नौकरी मिल गई। अब इन्होंने क्या किया कि वो खत जब पढ़ा, जब खत पढ़ा तो रोना शुरू कर दिया। अब लोग परेशान के खत में ऐसी क्या बात है, घर वाले परेशान, कहा नहीं सब गांव वालों को बुलाओ, सारे गांव वाले जमा हुए। तो उसने पूछा कि भाई क्या बात है, उसने कहा इसमें लिखा है कि इसने जो है शहर में जाकर नौकरी कर ली है। उसने पूछा कि इसमें रोने की क्या बात है, उसने कहा रोने की बात, अरे इसमें रोने की बात ये कि शहर की रंगीनियों से दिल लगा लेगा। मैंने बीवी को रुलाया, बच्चों को कहा बेटा तुम भी रो, बीवी को कहा तू भी रो, गांव वालों को कहा तुम भी रो, कहा हम क्यों रोए, वजह सुनने का बात ये है, मैं तो इसलिए रोता हूँ कि चलो मेरी नौकरी चली जाएगी, जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ाना खत्म हो जाएगा। लेकिन बीवी ने पूछा मैं क्यों रोऊं, कहा वहां जाकर रंगीनियों में दिल लगाएगा, दूसरी शादी करेगा, मैम को लेकर आएगा, कहा उससे अच्छा, उसने भी रोना शुरू कर दिया। बच्चों से पूछा, कहा बच्चे तेरे अब्बा तुझको शफकत नहीं करेगा, अब वही रहेगा यहाँ आएगा नहीं, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। गांव वालों ने पूछा हम क्यों रहे, कहा तुम इसलिए रहो कि जब वो शहर में रहेगा, पैसा सा लेकर आएगा तो सबकी जमीनें खरीद लेगा, सारे घोड़ों के अस्तबल की जगह गाड़ी खड़ी करेगा, तू भी रोना शुरू कर, सबको रोलाना शुरू कर दिया उसने। और बात क्या थी कि कुछ भी नहीं है। इसी तरह से ये जो है ना कि देखा नहीं है, अब किस बात पर रोएगा, देखा तो है नहीं ना, अब रोएगा किस बात पर, जी हुस्न तो मालूम ही नहीं है। अब गम पूछेगा, दिल से कहो कि आप ही गम करो, किस चीज का, किस चीज का चीज, हम कोई है ही नहीं चीज जिस पर गम करेगा, लेकिन देख लिया, अगर देख लिया तो अब गम क्या क्या नाम हुआ, गम है उसने मालूम, और वो हसरत ही उसका नाम है, हसरत है उसने ना मालूम। तो 3 मिनट हकीमुल उम्मत ने फरमाया कि फैसला तुम्हारे हाथ में है कि 3 मिनट की तकलीफ को बर्दाश्त करते हो या 3 दिन की तकलीफ को। क्या हजरत ने मंतिक से समझा दी बात। फिर हजरत ने फरमाया, मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं कि ये जो 3 मिनट की तकलीफ है कि गुनाह से बचने का गम उठा रहा है, किसी औरत लड़के को नहीं देख रहा, तो ये जो तकलीफ है 3 मिनट की, इस तकलीफ पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत ही खुशी है। ये गम पर, इस तकलीफ पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, और जो देखेगा ना और देखकर अपने दिल में खुशी हासिल करेगा, इस खुशी पर अल्लाह ताला की लानत बरसेगी। क्योंकि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लानल्लाहु नाज़िरा वल मंज़ूर इलैही, अल्लाह लानत फरमाए बदनजरी करने वाले पर, और जो औरतें या लड़के अपने आप को बदनजरी के लिए पेश करें उन पर भी लानत हो। तो अब इसने चूंकि लानती काम किया, नफ ने हराम खुशी एक ही, हराम खुशी को दरामद किया, हराम खुशी को इम्पोर्ट किया और हराम खुशी को चुराया, लेकिन इस खुशी पर, इस हराम खुशी पर अल्लाह ताला की लानत बरसेगी मेरे दोस्तों, और इसकी ये खुशी इसकी जिंदगी के चैन और सुकून को ले डूबेगी। देखिए इंसान है ना, कहते हैं ना बुजुर्गों से बात सुनी कि देखो हलाल कमाओ हलाल, वरना हराम आमदनी हलाल को भी खा जाएगी। یہ بزرگ فرماتے رہتے ہیں نا یہ بات بڑے بوڑھے کہ حلال کماؤ, حلال جو ہے نا حرام اگر تھوڑا بھی ہوگا نا وہ آپ پورے حلال کو برباد کر دے گا. اس لیے یہ جو میرے دوست ہو ذکر ہے, تلاوت ہے, تہجد ہے, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا, انسان نے ایک بدنظری کر لی وہ سارا نور ضائع ہو جاتا ہے. ایک بدنظری ساری لانتی, ایک لانت آئی, ایک لانت آئی سارا نور چلا گیا. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, اس کا پیٹ نفس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. حضرت نے فرمایا اس کا مزاج ایسا ہے نفس کا کہ اگر اس کو ساری دنیا کی حسین دکھا دو اب یہ تھک کر بیٹھ گیا. اس کے بعد کسی نے کان میں کہا ایک حسین اور ہے فلاں جگہ پر, کیا خیال ہے؟
دیکھو جی چلو اسے بھی دیکھ لیں.
ایسا مزاج ہے نفس کا, کیا نہیں ملے گا اس کو. فرمایا اب رہی بات کہ نفس کا علاج کیا کریں, اب اس نفس کا علاج کیا کریں کہ آخر یہ جو تقاضا ہمیں پیدا ہوتا ہے گناہ کا, ہم اس تقاضے کا کیا علاج کریں؟ میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں اس کا وہی علاج ہے جو جہنم کا علاج ہے, وہی علاج ہے. جہنم کا علاج کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی تجلی. اور اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج ہی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے. وہ کیا؟ نار شہوت. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نار شہوت کے کشت, ابھی مصرع مکمل نہیں ہے, نار شہوت کے کشت, یہ جو شہوت کی آگ ہے, گناہ کرنے کے جو تقاضے کی آگ ہے, یہ کیسے بجھے گی؟ کون چیز اس کو بجھا سکتی ہے؟ نار شہوت کے کشت کیسے بجھے گی؟ کیا چیز اس کو بجھائے گی؟ فرماتے ہیں نور خدا. یہ جو نور, جس طرح اللہ تعالیٰ کا جو نور خاص تھا اس نے جو جہنم کی آگ کو بجھائے گا, اسی طرح سے میرے دوست اللہ تعالیٰ کا نور ہی ہمارے تک شہوت کے تقاضے کو پورا کرے گا, شہوت کے تقاضے کو بجھائے گا. اللہ تعالیٰ کا نور ہی, نار شہوت کے کشت نور خدا, یہ اللہ کا نور. کیسے؟ معروف آگے فرماتے ہیں نور ابراہیم را استاذ ہوتا, یہ استاذ اصل میں استاذ ہے, ضرورت شیری کی جیسے ذات کو حذف کر دیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے نور نے اس جگہ کو بھر لو, وہ نہیں آئیں گے. اب جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نے نارے نمرود کو گلو گلزار بنا دیا تھا, حالانکہ چاروں طرف آگ جل رہی تھی, ابراہیم علیہ السلام کی چاروں طرف آگ تھی, جو اس آگ کے قریب آتا تھا قریب کوئی نہیں تھا, نمرود بھی دور تھا. نمرود کی بیٹی نے پوچھا کہ اس آگ میں کوئی آ سکتا ہے آگ کے علاوہ بھی؟ تو میرے شیخ ایک بات یاد آئی, ایک یہودی تھا اور ایک اللہ والے تھے, وہ دونوں کے سفر پر جا رہے تھے. عجیب واقعہ ایک یاد آیا, وہ بزرگ صاحب نسبت اللہ والے تھے, تو یہودی نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم حق پر ہیں. تو اس اللہ والے نے فرمایا بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں, لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب تمام ملتیں منسوخ ہو گئی, زیادہ حق پر اب وہی ہوگا جو اس شریعت اور ملت پر چلے گا. تو بات بحث چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ چلو اب فیصلہ ہو جائے کون حق پر ہے. اور فیصلہ کیسے کیا؟ فیصلے کا کہ دیکھو یہ آگ جل رہی ہے, دونوں ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں کس کا ہاتھ جلتا ہے. تو اس اللہ والے نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا, ان کا ہاتھ نہیں جلا. یہودی نے بھی اپنا ہاتھ ڈال دیا, اس کا ہاتھ بھی نہیں جلا, ہاتھ بھی نہیں جلا. اس یہودی کا ہاتھ بھی نہیں جلا. یہودی کہا دیکھو, اب اس اللہ والے کو ایک غم ہوا, ایک ہوئی کہ دیکھو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت پر دیا تو اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تو سداری فرمائی اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا. تو اللہ تعالیٰ سے آزاری کر رہے تھے. خواب میں رات کو سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی. اس خواب میں انہوں نے پوچھا ان بزرگ نے کہ اللہ میاں یہ کیا بات ہے کہ میرا ہاتھ تو آپ نے جلایا نہیں, تو یہی ہے لیکن یہودی کا ہاتھ بھی نہیں جلایا, وہ بھی نہیں جلا اس آگ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آگ اس ہاتھ کو کیسے جلا دیتی کہ جس آگ میں تیرا ہاتھ موجود تھا. ارے وہ اکیلا ڈال کر دیکھتا, تیرے ہاتھ کی وجہ سے وہ آگ تو گلزار بن گئی تھی, وہ اکیلا ہاتھ ڈال کر دیکھتا تب اس کو پتا چلتا. میرے شیخ نے ایک واقعہ اور سنایا تھا کہ ایک مسلمان एक यहूदी और एक ईसाई तीनों सफर पर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने हलवा पकाया। अब सभी हलवे की लालच में, मगर खाए कैसे, कौन पहले खाएगा, इब्तिदा कौन करे तीनों में से। उन्होंने कहा कि अच्छा भाई एक काम करते हैं, सोते हैं, रख लेते हैं, सुबह जो सबसे अच्छा खाब देखेगा वो इब्तिदा करेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, चलो भाई। अब सुबह सोकर उठे तो यहूदी ने कहा कि मेरा ख्वाब देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझे आसमानों पर ले गए, आसमानों की सैर कराई। मैंने कहा अच्छा, वो कहा मिस्लिम ने आरोप कहानी में दूसरों का भी ख्वाब सुनो। ईसाई ने कहा सबर करो रुको। ईसाई ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझे आसमान से ऊपर जन्नत की सैर कराई, वो किसने मेरा हक है। तो भाई सुनो सबर, मुसलमान की बारी। अब उसके बाद मुसलमान से पूछा भाई तुम अपना ख्वाब सुना। उसने कहा मैंने क्या ख्वाब देखना था, मेरा तो ख्वाब का है, तुम लोगों का तो बड़ा मुबारक ख्वाब है, मैं ख्वाब में सोया था तो एक बुजुर्ग आए, उन्हें मुझे उठाकर उठाया और ये फरमाया कि हलवे को खाओ, एक बदमाश गुंडा आया उसने कहा हलवा खाओ। मैंने कहा भाई वो लोग मेरे दोस्त है यहूदी ईसाई जो है, हमारा फैसला मिलजुल कर खाएंगे। कहा उसने तलवार निकाल के मेरी गर्दन उड़ाने लगा, कहा हलवा खाओ। मैंने कहा भाई उनका क्या होगा। कहा उनकी फिक्र ना करो, एक आसमानों पर गया है और एक जन्नत की सैर कर रहा है। अब तो वो दोनों ईसाई और यहूदी वो दोनों भागे देखती की तरफ, तो देखा सारा हलवा था। ये वाक्य देखो हमारे शेख ने सुनाया, हमारे बुजुर्ग देखो कैसा हंसाते भी हैं। और क्यों, क्योंकि फरमाते हैं इधा हंसा फकत फंसा। इधा हंसा फकत फंसा, जो हंस गया वो फंस गया। तो मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं कि जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा जबकि आग हर तरफ चल रही थी, तो नमरूद की बेटी ने पूछा कि इस आग में कोई आ सकता है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक इस आग में आ सकता है। पूछा कैसे, कौन आ सकता है, क्या तरीका है आग में आने का। फरमाया पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। बस अच्छा, उसने कलमा पढ़ा और आग में दाखिल हो गई। हकीम उल उम्मत ने बहशी जेवर में भी ये वाक्य लिखा है, फरमाया कि आग ने इमाम मुसलमान हो गई, बस आग में दाखिल हो गई और वो भी ऐसे बैठी है जैसे फूलों में बैठी है। तो मारूमी फरमाते हैं कि जिस तरह नूर इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो नूर था उनके कलमों में नूर नबूवत था, उस नूर नबूवत ने आग का असर आपके ऊपर नहीं होने दिया, बल्कि यहाँ तक के नमरूद की बेटी भी दाखिल हो गई, उस पर भी उस आग का असर नहीं हुआ। तो मारूमी फरमाते हैं जिस तरह से नूर इब्राहिम ने नारे नमरूद को बुझाया, ये जो हर वक्त गुनाहों के हर जगह गुनाहों की आग चल रही है, शहवत की आग चल रही है, इसका इलाज और तरीका क्या है कि नूर अल्लाह ताला का नूर हासिल करो, नूर खुदा। कैसे, अब ये नूर कैसे मिलेगा, इसके लिए दो काम करें। एक तो नूर वालों से नूर मिलता है, नूर वालों से नूर मिलता है, कल्ब को एक सुरूर मिलता है। इसके लिए जिनके कल्ब में अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का नूर, नूर मोहब्बत, नूर तकवा, नूर मार्फत, नूर इल्म जिनके कल्ब में मौजूद है, उनकी सोहबतों में बैठा करे, उनके पास बैठा करे। कि मारूमी फरमाते हैं कि देखो ये जो हमारे दिल के अंदर ये खासियत है कि ये जो दिल है दूसरे के दिल से चुराता है, उसके अच्छे अखलाक, ये दिल चुराने की इसमें खासियत है। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के शख्स ने लिखा कि हजरत मेरे अंदर गुस्से का मर्ज है, सदी सदी सख्त गुस्सा आता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं क्या करूं। हजरत ने फरमाया, वो जहाँ रहता था करीब में लखनऊ, फरमाया कि लखनऊ के अंदर अनवार डिपो के जो मालिक है मौलाना मोहम्मद हसन शाह काकोरी रहमतुल्लाह अलैह, हकीम उल उम्मत के खलीफा, फरमाया कि उनके पास जाकर बैठा करो। उसने हजरत की बात पर अमल शुरू किया। एक हफ्ते के बाद 15 दिन बाद खबर लिखा कि हजरत मेरे गुस्से में इतदाल आ रहा है, अब बर्दाश्त कभी कभी कर लेता हूँ। 1 महीने के बाद खत लिखा कि हजरत अब तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत मुतहम्मिल और गुस्सा मुझसे बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि मौलाना मोहम्मद हसन साहब काकोरी रहमतुल्लाह अलैह जब मैं उनके पास जाता था तो हजरत तो चूंकि بک ڈپو اپنے کتب خانے میں تشریف فرما اور اپنے کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے غصے کے بارے میں ایک بات نہیں فرمائی. میں تو جا کے بیٹھ جاتا تھا, آپ کا حکم تھا بیٹھا رہتا تھا, اور حضرت اپنے کام میں لگے, کوئی بات کر رہے ہیں, خریدو فروخت چل رہی ہے, کوئی دوست آ گیا اس سے بات کر لی, لیکن غصے کے بارے میں ایک لفظ نہیں فرمایا. لیکن میں حیران ہوں یہ ہوا کیسے. حکیم امت نے لکھا بات یہ ہے کہ مولوی محمد حسن صاحب کاکوری ان کی مزاج میں تحمل ہے, وہ متحمل المزاج ہے, بردباری اور غصے کو برداشت کرنا ان کے اوصاف حمیدہ میں سے ہے. تو ان کے قلب میں جو یہ اچھا خلق تھا, یہ اچھے جو اخلاق تھے, جب آپ ان کے پاس بیٹھے تو آپ کے دل نے یہ اخلاق ان کے دل سے چوری کر لیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تباہی تسرقو من تباہی اخرى, کہ جو طبیعت ہے طبیعتوں سے چراتی ہے, طبیعتوں سے چراتی ہے. بس فرماتے ہیں کہ یہی راز ہے کلو ما صادقین کا, کہ وہ اللہ والے کہ جن کی قلوب میں اللہ تعالی کی محبت کا چراغ جل رہا ہے, جن کے قلب میں اللہ کی محبت کی شمع روشن ہے, جن کا قلب نور محبت نور معرفت نور تقوی سے جن کا قلب روشن ہے بھرا ہوا ہے, جب ہم اپنے دل کو ان کے دل کے ساتھ ملائیں گے تو وہ نور ہمارے دل میں بھی منتقل ہو جائے گا, اور وہ اطمینان بھی, وہ چین بھی, وہ آرام بھی جو ان کے قلب میں ہے. لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ والوں کے پاس جب جاتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے, تو وجہ کیا ہے کہ دل دل سے ملایا. میرے شیخ فرماتے ہیں دل دل سے ملا, دو دل ہوئے نا دل دل, بس جب دل دل سے ملے گا تو گناہوں کے دلدل سے نکل آئے گا. کسرا کے ساتھ افتان آل زیر پہلے کا پھر زبر, دل دل سے ملا گناہوں کی دلدل سے نکل آیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے کا دلدل بن گیا. یعنی دلدل دیکھا, یہ دلدل وہ گھوڑا ہے, وہ گھوڑا بڑا اونچا سا ہوتا ہے, بڑا طاقتور اور اونچا گھوڑا, اس کو کہتے ہیں دلدل. تو فرمایا دل دل سے ملا تو دلدل سے نکلا اور اللہ کے راستے کا دلدل. وہاں کیسا لطیفہ مزیدار ہے, مست ہو رہے ہیں دیکھا. فرمایا اسی لیے اہل اللہ کے قلوب سے اپنے دل ملا دو, وہ کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھ جاؤ, وہ سوال نہ پوچھو بس خاموش بیٹھ جاؤ, تو ان کے قلب میں جو اللہ کی محبت ہے شمع ہے, اس کی روشنی اس کی شعائیں ہمارے دل پر پڑتی رہیں گی. جب ہم یہاں سے اٹھیں گے ایک تقریر نہ کریں کوئی بات نہ کریں, ہم ان کے پاس بیٹھے جب اٹھیں گے تو ہمارا قلب جو ہے نور ایمان سے روشن ہوگا, اس کے قلب میں ہمت ہوگی کہ اب میں اللہ والا بن جاؤں. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ایک صاحب نے مجھ سے کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں تمہارے پاس آ کر بیٹھتا ہوں تو دو تین دن تک تو بڑا اچھا معاملہ چلتا ہے, جماعت فجر کی جماعت بھی پابندی سے, تمام نمازیں, ذکر کا اہتمام, گناہ سے بچنے کا اہتمام, لیکن اس کے بعد پھر وہی کام شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس موبائل ہے؟ جی ہے. میں نے کہا دکھاؤ موبائل. میں نے موبائل نکالا, میں نے کہا یہ آپ کا جو موبائل ہے آپ اس کو بات کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی بیٹری ختم ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے. میں پھر کیا کرتے ہیں؟ جی چارج کرتا ہوں. کیسے چارج؟ جی پن لگا دیتے ہیں. میں نے کہا اس کے بعد پھر بیٹری چلتی ہے, اور جب بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو پھر چارج نہیں کرتے؟ نہیں جی پھر چارج کرتے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کی بیٹری چارج کروائی, کتنے دن چلے گی؟ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں چارج کرواتے اس کو؟ کیوں جناب؟ میں نے کہا آپ کو موبائل کی تو اتنی فکر ہے کہ اس کو جلدی جلدی چارج کروانا ہے, تو اپنے ایمان کے موبائل کو کیوں نہیں چارج کرواتے؟ دیکھیے مثال کیسی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, میرے شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فوراً مثال ادا فرما دی. تو اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی چند دن تو معاملہ اچھا چلتا ہے پھر گڑبڑ ہو جاتی, بات یہ ہے کہ ہماری بیٹری فیل ہو جاتی ہے. موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہوتا ہے پیٹرول ڈلواتے ہیں, سی این جی میں سی این جی ختم ہو جائے سی این جی بھرواتے ہیں, موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے موبائل کی بیٹری چارج کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں بھوک لگنے لگتی دوبارہ کھانا کھاتے ہیں. لیکن جہاں ایمان کا معاملہ ہے ایک دفعہ بیان سنا جی 6 مہینے کے لیے کافی ہوگا. 6 مہینے کے لیے کیسے کافی ہوگا بھائی؟ بات یہ کہ جب تک اللہ کے راستے میں پختگی نہ پیدا ہو جائے, استقامت نہ حاصل ہو جائے, اس وقت تک اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرے. اس وقت تک اللہ والے کے پاس بیٹھے پختگی آ جائے کہ وہ خود چارجر بن جائے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا, اب مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, اب اگر مدرسے میں کوئی عالم بن رہا ہے, اب وہ کیا ہوا یا حافظ بن رہا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے, حافظ بنے گا؟ आलिम बन सकेगा, कितना जमाना गुजर जाएगा। रोजाना आता है, आलिम बन जाता है, फिर और मेहनत करता है, तो पता चला पहले सिर्फ खुद आलिम बना, फिर बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि दूसरों को आलिम बनाना भी शुरू कर देता है। लेकिन उसके लिए पहले तो आलिम बनना जरूरी है कि नहीं है? उसी तरह से मेरे दोस्त, जब अल्लाह वालों की सोहबत से आते हैं इंसान अल्लाह वाला बन जाता है, फिर उस यानी अब गुनाह के जो मवाजा है वो फौरन अपना नफ्स को टाइट कर देता है कि खबरदार हसीन औरत आ रही है, चल रास्ता बदल, वो रास्ता बदलवा देता है, खबरदार निगाह उठा के नहीं देखना। नतीजा क्या है कि वो खुद अल्लाह वाला बन गया। फिर जब उसकी निस्बत और बढ़ती है जिक्र की बरकत से, अहलुल्लाह की सोहबतों से, तो फिर क्या है वो शख्स उसकी निस्बत लाजिमा नहीं रहती, मुतादी भी हो जाती। पहले खुद बालिग होता है, पहले खुद बच्चा होता है, फिर बालिग बनता है, फिर शादी हो जाती है, शादी के बाद पता चला उससे भी औलाद होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों कि वो पहले खुद रसूख हासिल करता है, रासिख बिल तकवा हो जाता है, जब रासिख बिल तकवा हो जाता है तब उसके बाद कह सकता है कि हाँ अब हमें सोहबत की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कहा हो कि अब हमें सोहबत की जरूरत नहीं है, वो सारी जिंदगी बल्ब रोशन करने के लिए सारी जिंदगी बिजली से वायर लगा के रखना पड़ता है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से मेरे दोस्तों अल्लाह वालों की सोहबतों से उनके कल्ब में जो नूर है ये हमारे दिलों में मुंतकिल होगा और फिर गुनाह से बचने में हिम्मत होगी। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? जिक्र भी करे। मेरे शेख ने फरमाया कि कोई आदमी सर्दी का जमाना है, आग के सामने बैठा हुआ है, हाँ गर्मी लग रही, बहुत अच्छा सर्दी से बचाओगे, लेकिन जैसे उठकर जाइएगा फिर सर्दी लगने लगेगी। हकीम साहब के पास गया कि हकीम साहब तो मेरा तो ये मामला है, आग के सामने बैठूं तो मैं गर्म रहता हूँ वरना तो सर्दी लगती है। हकीम साहब कहेंगे लो ये कुछ तक खाओ, ये माजून खाओ, ये तुम्हारे खून को गर्म कर देगा, तुम्हारे जिसमें गर्मी दौड़ेगी। तो बताइए जिस तरह से कुश्ता जिस्म में जाकर गर्मी करता है ना, उसी तरह से मेरे शेख फरमाते हैं जब तक अल्लाह वालों के पास रहोगे तुम्हारा नफ्स दबा रहेगा, शैतान की चाल नहीं चल सकेगी। नफ्स भी हैरान है, शैतान भी सख्त मुश्किल में है, नफ्स भी हैरान है और शैतान भी सख्त मुश्किल में है, वो जिसको बहकाना था वो तो शेख की महफिल में है। ये हमारे पीर भाई का शेर है कि नफ्स भी हैरान है और शैतान भी सब मुश्किल में है, वो जिसको बहकाना था वो तो शेख की महफिल में। अरे ये तो क्या, ये वहां पहुंच गया, इसको वहां जाने से रोको, क्योंकि अगर ये वहां पहुंच गया अल्लाह वाला बन गया तो जालिम खुद तो मेरे हाथ से निकलेगा, एक मखलूक को अल्लाह वाला बना देगा। इसलिए शैतान ज्यादा कोशिश करते हैं नहीं जाओ, कोई बात नहीं है चले जाना हजरत, तुम कोई बात नहीं हजरत की जाना, फिर मिलने चले जाना, अगले हफ्ते इस हफ्ते रहेंगे अगले हफ्ते चले जाना, आज तो जरूरी काम है। नतीजा क्या होता है मेरे दोस्तों, शैतान इस तरीके से रोकता है, करते करते वो अल्लाह से दूर करता है, पता चला बैटरी डाउन। अब फिर क्या कहते हैं, यार तुम तो इतने जमाने से जा रहे हो, तुम अभी तक वैसे की वैसे ही, क्या फायदा हुआ? तो हालांकि कसूर इसका अपना होता है, तो शैतान उसी को कसूर ठहराता है, यार ये अल्लाह वाले इनका कोई फायदा नहीं है, इनके पास जाएंगे तो वो तुम कितने जमाने से जाओ, हालांकि नागे करवा रहे उनकी बात पर अमल नहीं करवाता, और फिर उसके बाद कसूरवार भी उन्हीं को ठहराता। तो क्या मेरे शेख फरमाते जब तक सोहबतों में रहोगे गर्म रहेगा ईमान, लेकिन जहां निकले एक आदमी चला फिर ठंडे हो गए। फरमाया उसके लिए क्या करो, कुश्ता खाओ, अल्लाह के नाम का कुश्ता, जिक्र का एहतमाम करो, जो तू ले अल्लाह का नाम तेरा सब बनेगा काम। फरमाया जो जिक्र नहीं करता, जिक्र की नागा, जिक्र का नागा रूह का नागा है, जिक्र का नागा रूह का फाका है। मेरे मुर्शिद क्या फरमाते, जिक्र का नागा रूह का फाका है। फरमाते कि जिस तरह कोई आदमी रोटी ना खाए कैसा कमजोर हो जाएगा, उसी तरह से अगर कोई आदमी जिक्र नहीं करेगा उसकी रूहानियत भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे शेख फरमाते चार तस्बीह, फरमाते कि ये चार तस्बीह इसके लिए मुरीद होने की भी शर्त नहीं है, इसके लिए मुरीद होने की शर्त भी नहीं है। क्या एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह दरमियान दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा शरीफ को पूरा कर। एक तस्बीह से मुराद 100 मरतबा होता है, एक तस्बीह से मुराद 100 मरतबा होता है। और दूसरी तस्बीह क्या, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, एक तस्बीह अल्लाह का नाम ले, अल्लाह, पहले अल्लाह पर जल्ला जलालू कहना वाजिब है, जल्ला जलालू, अल्लाह 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 अल्लाह, वहां पे इस तरह अल्लाह का नाम लो। एक दो तस्बीह हो गई, इसी तस्बीह इस्तिगफार की पढ़ लें, استغفر الله يا استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب اليه يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين। कोई भी एक दिन में से कोई एक भी तस्बीह पढ़ ले तो मरता हो गया। चौथी तस्बीह क्या है, दुरूद शरीफ पढ़े सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तस्बीह इसकी पढ़ ले। अब कहे थी 15 से 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट, 24 घंटे में कितने मिनट होता है, 1440 मिनट, 24 घंटे को 60 से जाते हैं तो 1440 लाख सब 20 मिनट 1420 मिनट आपके सब 20 मिनट अल्लाह में आके, लेकिन वो 20 मिनट मेरे दोस्तों पूरे दिन में कुव्वत का काम देंगे। फिर कोई हसीन आएगी आके खुद ब खुद इंशाल्लाह झुकेंगी, लेकिन इसका मतलब ये ना इंतजार करना आके झुक जाए, यानी आके तो हमें झुकानी होगी लेकिन पेट्रोल होगा मेरे पास दोस्तों हमारे पास, यानी कि अब जी अब जिक्र है अब ला इलाहा का जिक्र है हमारी आंख पर चढ़ जाए और वो उसे नीचे करे नहीं होगा, यानी हमें हिम्मत वो जो हिम्मत हम कहते हैं कि जी हिम्मत की कमी है वो हिम्मतें मिलेगी। सोबतों में बैठे एक काम क्या सोबतों में बैठे, दूसरा काम क्या जिक्र करे। हकीम उम्मत से किसी शख्स ने कहा हजरत क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिक्र करते रहे और शेख से खतों की दावत करते रहे और हम अल्लाह वाले बन जाए। फरमाया जी हाँ शोहर जो है कराची में बीवी लाहौर में खतों की दावत के जरिए औलाद पैदा हो जाएगी। फरमाया उसी तरह से ये नस्बत जो है सोबत में पांच बैठने से मुंतकिल होती है, उसके बाद पांच बैठे जिक्र करे इंशाल्लाह ताला ये दो काम करे फिर कोई वजह है फिर और गुनाह से बचने में हिम्मत को इस्तेमाल करे। मेरे शेख फरमाते फिर कोई वजह नहीं है कि ये शख्स अल्लाह वाला न बने। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह वाला बना दीजिए, या अल्लाह ताला ये हमारे नफ्स को मगलूब फरमा दीजिए, या अल्लाह ताला हमारे रूह को नूर से मुनव्वर और मालामाल फरमा और हमारी रूह को नफ्स पर गालिब फरमा, या अल्लाह गुनाह के तकाजों को दबाने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह ऐसा ईमान ऐसा यकीन अता फरमा कि हम लम्हा अरसास आपको खुश रखें और एक लम्हा अरसास भी आपको नाराज न करें। हमारे छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह ताला हमारी खयानतों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम सबको 100% अपना फरमाबरदार बना, अखलाकी बुलंदी अता फरमा, हमारे गंदे अखलाक को अच्छे अखलाक से तब्दील फरमा, और या अल्लाह ताला हम सबको अपनी महब्बत अपने ताल्लुक के खास नसीब फरमा, हम सबको जज्बा कर अल्लाह वाला बना दीजिए। या अल्लाह हम सबको जज्बा कर अल्लाह वाला बना, सेहत जिस्मानी में अता फरमा, सेहत रूहानी में अता फरमा, और या अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमा, अहले महफूज के फर्जों को अदा फरमा, अहले मुसीबत को अहले आफियत बना। या अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क हलाल आफियत और फरावानी के साथ अता फरमा, हमारे दिलों को चैन सुकून और इत्मीनान अता फरमा, और या अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारी तमाम जायदादात को पूरा फरमा। जो हज्जाज इकराम हज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं या हज पर रवाना हो चुके हैं, अल्लाह तमाम हजियों के हज को आसान फरमा और उनके हज को कबूल फरमा, और या करीम मालिक और जो हज पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं अपने करम से अल्लाह गैब के खजाने से उनकी मदद फरमा, और मेरे शेख और मुर्शिद की उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह ताला मेरे शेख का रुतबा बढ़ा दे, सरताज जमाना मेरे हजरत को बना दे। या अल्लाह ताला अहलेल्लाह की मोहब्बत हमारे कुलूब में अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।